बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 10 सितंबर 2018 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की आगामी 2 बैचेस के लिए अपने एडमिशन लिए हैं और रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से 6 मित्र वे हैं जिन्होंने अभी अगले महीने अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है, जो 21 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं और 4 नवंबर को पूरी हो जाएंगी। इन 6 मित्रों के नाम हैं विनय कुमार त्रिपाठी, अंकिता शर्मा, अमित सिंह, मंगलेश प्रताप सिंह, कुमकुम शर्मा और मीनाक्षी। विनय कुमार त्रिपाठी हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अंकिता शर्मा है ऋषिकेश देहरादून उत्तराखंड से, अमित सिंह हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मंगलेश प्रताप सिंह हैं चंदौली उत्तर प्रदेश से, कुमकुम शर्मा हैं, इनका गांव है भूतगढ़ी जिला बुलंदशहर यूपी से, और मीनाक्षी हैं पटना बिहार से। तो आप सभी का मैं हार्दिक रूप से अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। और मित्रों, अब मैं स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने अगले साल के 3 से 17 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अमरजीत, आप सासरौली हरियाणा से हैं, कृष्णा कुमार, आपका गांव है घैलाड़ जिला मधेपुरा बिहार से हैं, श्याम सुंदर यादव, आपका गांव है मीठापारा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और सोनम यादव, आपका गांव है सलेमपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो अमरजीत, कृष्णा कुमार, श्याम सुंदर यादव और सोनम यादव, आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज सीधे मुख्य विषय पर आऊं, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आज देना चाहूंगा शुरुआत में ही। इस बीच में मुझे बहुत से मेल मिलते रहे और वो मेल इस बात को लेकर थे कि सर, अब आप देख रहे हैं कि 2 बैचेस के एडमिशन चल रहे हैं, एक अभी जो अक्टूबर नवंबर में होना है और दूसरा बैच जो नेक्स्ट ईयर मार्च में होना है, और इसके बारे में डेटा आप लोगों को मालूम है। पहले भी कुछ मेल आए थे कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके प्रश्न थे कि हमें क्या करना चाहिए, उनके सामने अपनी चलिए जो भी दिक्कतें हैं कि किसी के एग्जाम डेट आ गए हैं, किसी के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की डेट इसी बीच में आ गई है, वो कोई बात नहीं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट बैच है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन उनके सामने दोनों ऑप्शन है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनमें उन्हें किस ऑप्शन का चयन करना चाहिए। तो दोनों तरह के स्टूडेंट हैं। देखिए, दरअसल सवाल होता क्या है कि होता यह है कि हमारे जो निर्णय हैं, हमारे निर्णय कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, और अगर आप उन्हें बेसिक सिद्धांतों पर आधारित कर देते हैं तो फिर निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे चलिए मैं अब बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे लेकिन उनके सामने अब कोई दूसरी समस्या आ गई है जिसकी वजह से वो आने में असमर्थ है और वो पूछ रहे हैं कि हम क्या निर्णय ले, आए या ना आए या बाद में आए, राइट? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, राइट? अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो बात खत्म हो गई, और चूंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके दिमाग में द्वंद्व है। दूसरी बात है कि ये जो क्लासेस होंगी इसके बारे में आपका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में परफेक्ट बना दे, आपको एक रास्ता दिखा दे, आपको एक रोड मैप दिखा दे, और आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप आईएएस की करना चाह रहे हो या स्टेट सिविल सर्विस की करना चाह रहे हैं, ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया या एडमिशन ले लिया, अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राइट? अब आप केवल ये सोचिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है या यहां न आना सही रहेगा। ये सोच करके देखिए कि अगर आप नहीं आने का निर्णय लेते हैं तो आप क्या खोएंगे, और अगर उसे छोड़ने का निर्णय लेकर के यहां आने का निर्णय लेते हैं तब आप क्या खोएंगे। देखिए इसका उत्तर एक ही नहीं है, हर एक स्टूडेंट की दृष्टि से अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन को लूं, मेरे लिए एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। बाकी तो देखिए जो घरेलू समस्याएं हैं, जो दिमागी कमजोरियां हैं, वो सब तो चलती रहती है, उनका कोई अंत नहीं होता है, उन्हें तो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन डेट आ गई तो आप तो उसे तो मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन यहां याद रखिए कि दो तरह के एग्जामिनेशन है, पहला कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और दूसरा आपका कॉलेज का एग्जामिनेशन। नो डाउट कि अगर कॉलेज के एग्जामिनेशन की डेट है तो आपको उसे प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक साल जुड़ा हुआ, एक साल की मेहनत जुड़ी हुई है, तो बट नेचुरल है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसकी डेट इस बीच में है तो उसके कई आधार हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत श्योर है, जो तैयारी कर सकते थे आपने कर ली है, तो बट नेचुरल है कि फिर आपको उधर बैठना चाहिए। अगर आपकी तैयारी मान लीजिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट ही है, इसके बाद आपकी एज खत्म हो रही, तो बट नेचुरल कि आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार तैयारी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन मैं ऐसी चांस ले रहा हूं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको उसे छोड़ करके इधर डाइवर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि चांस लेने से चांस मिलता नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। कॉलेज वगैरह में तो भले ही चांस मिल जाए लेकिन यहां चांस जैसी कोई बात होती नहीं है मित्रों, क्योंकि दूसरे बहुत से स्टूडेंट बैठते हैं, जो भी थोड़ा सा बेहतर करेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यहां बताया ही यह जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में अगर आप तैयारी करके कैसे करनी है ये समझकर जाते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक वैज्ञानिक रूप दे सकेंगे। फिर आप क्यों अपना 3-4 महीने का समय एक्सटेंड करना चाह रहे हैं? मान लीजिए कि आपने फैसला किया कि मैं मार्च वाले में बैठूंगा, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप इसमें भी आ सकते हैं, दोनों च्वाइस है, तो बट नेचुरल है कि आपको इसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने जो आप तैयारी करेंगे उसे एक सिस्टमेटिक रूप मिल जाएगा। तो मित्रों सिचुएशन देखिए बिल्कुल अलग अलग होती है, आपको निर्णय अपने सिचुएशन के संदर्भ में लेना होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स आप सबको दे दिए हैं, क्योंकि इस बीच में इस तरह के बहुत से मेल आने लगे तो मुझे लगा कि नहीं कम से कम मुझे इस बारे में आपका सही निर्देशन करना चाहिए। फैसला बिल्कुल आपके अपने हाथ में है, आपके अपने ऊपर है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कोई न्यूज नहीं है, न्यूज एनालिसिस के तहत आज कोई भी ऐसी न्यूज मुझे कल की कुछ दिखाई नहीं दी इस बीच की कि जिसको आधार बनाकर हम आज बात करें। तो हम सीधे सीधे अपने मुख्य विषय पर आते हैं, और आपको मालूम है कि जो मुख्य विषय हमारा फ्राइडे का रहा है समलैंगिकता पर बनते सवाल, आज उसी के सेकेंड पार्ट पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। इस बीच में आपने बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे समलैंगिकता पर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको लेकर के काफी आर्टिकल आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं, और एडिटोरियल कमेंट्स तो लगभग सभी अखबारों ने लिखे भी हैं, और मैं आप सबको उसमें से जो भी मुझे उपयुक्त लगता है अपने लेवल पर आपकी दृष्टि से वो प्रोवाइड भी कर रहा हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस पर आपने नोट्स लेने शुरू कर लिए होंगे, और नोट्स आप जो लेना है आपको पॉइंट्स भर नोट करते चले जाइए, बस दैट्स ऑल, वही सफिशिएंट है। मैंने कहा कि इस पर बनते सवाल का मतलब है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस घटना को लेकर किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं, आप देखिए कि घटना एक है, इसमें यही समझने की कोशिश कीजिएगा, घटना एक है और उस पर कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के प्रश्न बन रहे हैं, बस आपको इस तरीके से अपना दिमाग ओपन रखना होगा, इस तरह की दृष्टि विकसित करनी होगी, तभी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ सही मायने में न्याय कर सकेंगे। देखिए जो पहला प्रश्न बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, किस देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है, और लिविंग विथ डिग्निटी, लिबर्टी एंड लिविंग विथ डिग्निटी, और इस लिबर्टी और लिविंग विथ डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसको उन्होंने समलैंगिक लोगों तक विस्तृत कर दिया है, इसको विस्तार दे दिया है। पहला प्रश्न कि लिबर्टी क्या होती है, लिविंग विथ डिग्निटी क्या होती है, क्या हमारी जो अपने नॉर्म्स हैं, हमारी जो तथाकथित नैतिकताएं हैं जो कितने साल पहले की थी, वो किसी व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ हो सकती हैं, और अगर हैं तो क्या उन्हें बदला नहीं जाने, मतलब ढेर सारे मुद्दे उठेंगे और मैं अगर उन मुद्दों की चर्चा करूंगा फ्रेंड्स तो मैं प्रश्नों की चर्चा नहीं कर सकूंगा। ये मैं आपको फूड फॉर थॉट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन्हें नोट करते जाएं और इन पर आप सब विचार करें, और अगर आपका कोई ग्रुप है तो इस पर डिस्कशन करें। दूसरा है कि आप देखें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों को बदल रहा है। अगर आप इसका इतिहास देखें तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को सही माना, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मामले को उलट दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये समलैंगिकता का जो कानून है वो सही है, और अब उसको वो खुद उलट रही है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कोर्ट ही लगातार अपने दिए गए निर्णयों में सुधार कर रहा है। अब इसमें दोनों पक्ष हैं, देखिए ये कोई आलोचना की बात नहीं है, मतलब कोर्ट इज सो ओपन, उसका दिमाग खुला हुआ है, ये नहीं कि साहब हमने जो निर्णय दे दिया बस वही सब कुछ है, नॉट एट ऑल। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं और यहां तक कि संविधान में निहित शब्दों के की परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं, ये व्यक्त होता है। ये है सुप्रीम कोर्ट के अपने ही निर्णय को बदलना। थर्ड, आप देखिए कि जो हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत से आधार हैं, आंदोलन हो रहे हैं, समाज सुधार हो रहे हैं, लोगों की मांगे हो रही हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो बेस का काम कर रही है। समलैंगिकता को उसने स्वीकार कर लिया ना, अब समाज इसे स्वीकार करता है या नहीं करता है वो एक अलग बात है, और कब तक नहीं करता है वो बात है, समाज अब क्या रिएक्शन इसके ऊपर करता है वो देखना है। इसका मतलब है कि जुडिशरी भी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है, होता ही है। फिर आप देखिए कि बकायदे अब विवाह कानून में भी परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। भाई अभी तक तो ये था कि स्त्री और पुरुष के विवाह को ही मान्यता थी, अगर समलैंगिक सेम जेंडर के लोग विवाह करने के लिए आ गए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अब वो अपराध तो नहीं है, यहां भी होगा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि ये माना जाता था कि अप्राकृतिक है, तो अब अप्राकृतिक क्या है और प्राकृतिक कृत्य क्या है इसकी भी परिभाषा बदलेगी, क्योंकि जिसे अभी तक अप्राकृतिक माना जा रहा था उसे प्राकृतिक माना जा रहा है। तीसरी चीज के अभी तक जो मानसिक स्वास्थ्य कल्याण अधिनियम था उसमें इस तरह के कामों को एक तरह से मानसिक बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब वो मानसिक बीमारी नहीं रह गई क्योंकि ये प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो मानसिक बीमारी नहीं है, तो वहां भी अब आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक घटना से कितनी सारी चीजें उभर रही हैं। फिर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का मामला भी आएगा, समलैंगिक जो वर्ग है वो बहुत थोड़ी सी संख्या में है और बाकी पूरी की पूरी आबादी बहुसंख्यक है जो इसके खिलाफ है, इसको सही नहीं मानती है, तो क्या एक लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को अपनी बात रखने, कहने और जीने का गरिमापूर्ण अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है, यह भी एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि एक तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और दूसरा उदारवादी लोकतंत्र है, बहुत ही लिबरल डेमोक्रेसी। ये जो समलैंगिकता का मामला है अगर इसे समाज स्वीकार कर लेता है तो ये समाज के उदारवादी लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक होगा। तो कैसे प्रतीक होगा इस पर भी सोच करके देखिए। याद रखिए मैं लोकतांत्रिक चेतना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उदारवादी लोकतांत्रिक चेतना की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए फ्रेंड्स की एक घटना है और उस पर मैंने इतने सारे प्रश्न तो आपको बता दिए हैं, अभी भी प्रश्न की संभावनाएं हैं, इसमें से अगर कोशिश की जाए थोड़ी सी और गहराई में जाया जाए तो 2-3-4 प्रश्न और भी निकल आएंगे। खैर, लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए अगर आप इतने डायरेक्शन से कुछ पॉइंट्स जुटा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो मुख्य विषय के बारे में इतना ही। आज मैं आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि इस बीच में घटनाएं इतनी सारी घट गई हैं कि खूब सारा लिखा भी गया है, तो कल के न्यूज़पेपर्स के भी हैं और आज के भी न्यूज़पेपर्स के, तो दोस्तों वो सब आप देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, कृष्णानंद पटेल गाजीपुर से, उपासना श्रीवास्तव, स्वाति रानी किरतपुर उत्तर प्रदेश से, हरिराम बांदा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर एच के रोहिला चंडीगढ़ से, दीपिका कोहली और चक्रपाणी पांडे मनकाहारी मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आवाज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।